आज है 25 जनवरी दिन बुधवार। सभी श्रोताओं को राजेश जोशी का नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता विनय कटियार ने प्रियंका गांधी की खूबसूरती पर ये टिप्पणी की।
उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं।
प्रियंका गांधी ने पलटवार किया, कहा हंसी आती है ऐसी बातों पर। पर पंजाब के चुनावी घमासान में महिलाएं क्यों अलग थलग पड़ गई हैं?
इतना काम करने के बाद भी अगर पार्टी हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचती तो फिर ज्यादा बेटर है घर बैठे ही।
और परमाणु हथियारों के बटन से कितनी दूरी पर होते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? सुनिएगा दुनिया जहान में, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हाल के हुए चुनाव में गड़बड़ियों की जांच कराएंगे। राष्ट्रपति की ये कोशिश अमरीका में और सख्त मतदान प्रक्रिया की जमीन तैयार कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जांच में मृत वोटरों के नाम का इस्तेमाल करने वालों का पता लगाया जाएगा, साथ ही उन लोगों का भी जो कानूनी रूप से वोट देने के अधिकारी नहीं और जिन्होंने दो राज्यों में वोट देने के लिए अपना नाम दर्ज करा रखा है। राष्ट्रपति आज कई आदेशों पर दस्तखत करने वाले हैं जिनका संबंध अप्रवासन और देश की सुरक्षा से है। इनमें अमरीका और मेक्सिको के बीच दीवार बनाने की योजना भी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एक होटल पर चरमपंथियों के हमले के बाद कम से कम 28 शवों को देखा है। कर्मचारियों के मुताबिक 7 पत्रकारों समेत 43 लोग होटल में हुए 2 धमाकों में घायल भी हुए हैं। दाया होटल में हुए हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी गुट अल शबाब ने ली है। देश के सुरक्षा मंत्री अब्दुर्रज़ाक उमर मोहम्मद ने कहा कि 4 चरमपंथियों की मौत हो गई है। इन चरमपंथियों ने होटल को अपने कब्जे में ले लिया था। स्थानीय पत्रकार गुरे भी उस वक्त होटल में थे। उन्होंने बताया, मैं और दूसरे पत्रकार पहले धमाके को कवर कर रहे थे, उसी दौरान दूसरा धमाका हुआ। मैंने देखा कि बहुत से लोग जमीन पर गिरे, उनमें से कई लोग मर गए और दूसरे घायल हुए। शहर बदल गया है। हमले के वक्त कई सांसद भी होटल में मौजूद थे। भारत प्रशासित कश्मीर में अधिकारियों का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास हिमस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। बांदीपुरा जिले के गुरेज इलाके में एक मध्यम आयु के दंपति और 2 बच्चों की मौत हुई है। उधर गांदरबल जिले में सेना का कैंप हिमस्खलन की चपेट में आया, जिसके कारण एक सैनिक की मौत हो गई। श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
श्रीनगर से करीब 200 किलोमीटर दूर जिला बांडीपोरा के गुरेज इलाके में बुधवार की सुबह को हिमस्खलन होने के कारण एक ही परिवार के 4 सदस्य बर्फ में दबकर मर गए, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। पुलिस के अनुसार बचाव कार्रवाई में अभी तक 150 लोगों को गुरेज इलाके में बचाया गया है, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एक दूसरी घटना में कश्मीर घाटी के सुन्नामर्ग में सेना के एक कैंप को हिमस्खलन ने निशाना बनाया, जिसमें सेना के एक कैप्टन की मौत हो गई, जबकि कई लापता सैनिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बर्फ से निकालकर बचाया गया।
पिछले साल भी सियाचिन के पास सेना का एक कैंप हिमस्खलन की चपेट में आया था और उसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता विनय कटियार ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पर दिए अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। विनय कटियार ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा, क्या फर्क पड़ता है, उनसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत और भी लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं और कई कलाकार हैं। प्रियंका गांधी ने इसके जवाब में कहा है कि इससे महिलाओं को लेकर बीजेपी की मानसिकता जाहिर हुई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने उत्तर कोरिया को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रतिबंध उन सामानों पर है जिनका इस्तेमाल महाविनाश के हथियार बनाने में हो सकता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने उन सामानों की सूची जारी की है जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा है। इनमें ड्रोन सॉफ्टवेयर से लेकर वीडियो कैमरा तक शामिल है। बीते साल नवंबर में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के मौजूदा परमाणु हथियार कार्यक्रम को देखते हुए नए प्रतिबंध लगाए थे। चीन सरकार की ओर से जारी सामानों की लंबी सूची इन प्रतिबंधों के हिसाब से है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि उनकी सरकार यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर करने की योजना के लिए औपचारिक नीति के बारे में दस्तावेज पेश करेगी। सरकार के रुख में यह बदलाव संसद में तीखी बहस के बाद सामने आया। संसद में बहस इस बात पर हो रही थी कि ब्रेक्सिट के मामले में सरकार की रणनीति किस हद तक संसद में जाँच की जा सकती है। इसी हफ्ते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यूरोपीय संघ से बाहर जाने की आधिकारिक प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब संसद इस पर सहमति दे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीति के अलग अलग रंग भी नजर आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि उनसे ज्यादा खूबसूरत और भी लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं। इस पर राजनीतिक पारा थर्मामीटर तोड़कर निकल गया। हालांकि अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की आलोचना की है। उधर जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उनके एक बयान को कुछ लोग महिला विरोधी करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचलों पर समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
चुनावी मौसम में विरोधी नेताओं से तारीफ की उम्मीद तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन विरोध जब व्यक्तिगत टिप्पणियों और शब्दों की मर्यादा लांघने लगे तो वो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं रह जाता बल्कि राजनीति से परे हो जाता है। कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे विनय कटियार ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि उसकी प्रतिक्रिया राजनीतिक प्रतिरोध की सीमाएं पार कर गईं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए विनय कटियार ने प्रियंका गांधी के बारे में कुछ इस तरह टिप्पणी की थी।
उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा।
विनय कटियार ने यह बयान दिल्ली में दिया था, सो दिल्ली महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजने का फैसला किया है। कटियार के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने भी एक बयान जारी करके अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने आधी आबादी के बारे में अपनी और अपनी पार्टी की मानसिकता को उजागर किया है। लेकिन विनय कटियार से इस बारे में जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने वो नहीं कहा जो दिखाया और सुनाया जा रहा है।
हमने कहा बहुत सुंदर लोग है, तो ये हमने विषय दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, दूसरे ढंग से सब लोगों ने ट्रीट किया।
कटियार दिल्ली में बोल रहे थे तो पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने भी वोट यानी मत की तुलना बेटियों से करके एक विवाद शुरू कर दिया।
बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं।
शरद यादव अपने बयान पर कायम है और उनकी पार्टी के नेता भी उनकी इस बात में कोई गलती नहीं देख रहे हैं। लेकिन विनय कटियार के बयान को लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरे दलों की महिलाओं ने भी आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिमा सिंह कहती हैं,
उनकी आदत रही है कि वो इस प्रकार की टिप्पणियां हमेशा करते रहे हैं। महिलाओं के प्रति उनका कोई नहीं है। चुनाव अपनी जगह है लेकिन गरिमा अपनी जगह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही इस प्रकार का है जो अशोभनीय टिप्पणियां करके चर्चा में बने और अपने आप को चर्चित करें।
बहरहाल ये चुनाव का मौसम है, टिप्पणियों में तलखी भी बढ़ेगी, आरोप भी और लगेंगे और पैंतरे भी बदले जाएंगे। लेकिन भाषा की मर्यादा और संयम यदि बना रहे तो चुनावी माहौल में बाकी बातें शायद ज्यादा हैरान नहीं करेंगी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
तो एक और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अपर्णा यादव और रीटा बहुगुणा या शीला दीक्षित जैसी राजनीतिक महिलाएं चर्चा में हैं, पर दूसरी ओर पंजाब में महिलाएं राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों में कई महिलाओं की एक ही शिकायत रही कि आखिरी वक्त पर उनकी जगह किसी मर्द को टिकट दे दिया गया। हमारे संवाददाता सलमान रावी इन दिनों पंजाब का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने वहीं से भेजी है ये रिपोर्ट।
अमृतसर की सड़कों पर ये हुजूम पंजाब में हो रहे विधानसभा के चुनावों के लिए अपने प्रत्याशी का प्रचार कर लोगों से वोट मांग रहा है। इस समूह में सिर्फ महिलाएं हैं जो घर घर जाकर लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट देने को कह रही हैं।
लेडीज को खुद अपने आप को इतना वो करना पड़ेगा कि धीरे धीरे लेडीज
लेडीज का माइंडसेट भी ऐसा है ना, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि लेडीज बाहर भी नहीं निकलती,
नहीं निकलना चाहती अभी भी इस इतने मतलब डेवलपमेंट के बाद भी लेडीज अभी भी मतलब थोड़ा पॉलिटिकल उसमें आने से अभी भी हम उसी मतलब पुरानी राज के अराउंड ही घूम रहे हैं।
इस बार लगभग हर राजनीतिक दल ने महिलाओं को टिकट देने में बहुत कंजूसी बरती है। जहां कांग्रेस ने 117 सीटों में सिर्फ 7 पर महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं, अकाली दल ने 94 सीटों पर मात्र 5। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2, जबकि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 6 महिला उम्मीदवार ही खड़े किए हैं। ऐसी ही एक नेता हैं लीना तापरिया, जो पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। लुधियाना से उनकी टिकट लगभग पक्की समझी जा रही थी, मगर ऐन वक्त में उनकी जगह राकेश पांडे को टिकट दे दिया गया।
इन लोगों का यही काम था कि आइए जी महिला कांग्रेस धरने पे चलना है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई महिलाएं बाहर निकलेंगी, क्योंकि महिलाओं मेरा ही मन टूट गया तो बाकियों का क्या हाल होगा। एक दिल टूटने वाली बात है कि इतना काम करने के बाद भी अगर पार्टी हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचती तो फिर ज़्यादा बेटर है घर बैठे।
आम आदमी पार्टी की महिला विंग की उपाध्यक्ष राजवंत कौर भी एक ऐसी ही महिला नेता हैं जिनका टिकट आखिरी वक्त में काट दिया गया।
ऐसी राजनीति चेंज करना है तो देखो जेंट्स कोई भी नहीं चाहता कि लेडीज़ में तो अगे होवे। आप देखते हैं भी पंजाब भी इन्ना अगे तो है नहीं गा, फिर भी पिंडा दे विचों से आए हुए हैं तो उन्होंने मतलब भी लेडीज़ एक नीचे ही रहन सब तो अगे ना आन, यही मतलब है। इस करके सानू पॉलिटिक्स भी नहीं अगे जान दिता जाता है।
कुछ ऐसी ही कहानी भारतीय जनता पार्टी की नेता रमा महाजन की भी है, जिन्हें अमृतसर पूर्वी से पार्टी का उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा था, मगर उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा लीना तपारिया और राजवंत कौर के साथ हुआ। अमृतसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार बीबी गुरनाम कौर कहती हैं कि औरतों की जब बात आती है तो देश और खासतौर पर पंजाब के सभी बड़े राजनीतिक दलों का एक जैसा ही रवैया है।
ये साड़ियाँ पार्टियाँ जहाँ कांग्रेस ला लिए जहाँ बीजेपी ला लिए जहाँ होर अकाली दल ला लिए, ये औरतों को कभी बराबर का हिस्सा ही नहीं देंगे। जो साढ़े पंजाब दे विच जो हो रहा है, जे औरतां सरपंच बन जांदियां वा जे औरतां पंचायत मैंबर बन जांदियां वा, कभी औरतां थाणियां च कभी वेखियां जांदियां, कभी औरतां कचहरी के जांदियां वेखियां कभी।
वरिष्ठ पत्रकार शम्मी सरीन मानते हैं कि पंजाब एक पुरुष प्रधान समाज ही रहा है और इसलिए राजनीति में भी इसकी झलक मिलती है।
मैंने एक भी कोई डिप्टी कमिश्नर महिला नहीं देखी है, कोई यहाँ की मेयर की कुर्सी पर बैठते हुए महिला को नहीं देखा, कोई कमिश्नर महिला को नहीं देखा है, तो ये तो पहले से है। हाँ, कुछ महिलाएं जो कहीं आती हैं जैसे हरसिमरत कौर है, हम उनका ले लेते, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसलिए वहाँ चले गई क्योंकि उनके पीछे उनके जो ससुर थे प्रकाश सिंह बादल और उनके जो पति हैं सुखबीर सिंह बादल, उनका इंटरेस्ट था। वो 5 दिन 6 दिन दिल्ली में जाकर बैठे रहे जब तक उसको वो मंत्रिमंडल में नहीं ले लिया गया। यहाँ पर अमृतसर में जितनी भी काउंसलर्स हैं उनके पति अपने आप को जाकर बोलते हैं जी मैं काउंसलर हूँ। अभी तो चलो ये मुझे लगता है टैग थोड़ा सा फीका पड़ गया है, लेकिन ये मशहूर रहा है कि ये कुड़ी मारों का प्रदेश है।
कुड़ी मारों या भ्रूण हत्या के लिए पंजाब और हरियाणा काफी बदनाम रहे, हालांकि समाज की सोच काफी बदली, मगर आज भी राजनीति में पंजाब की महिलाएं खुद को काफी उपेक्षित ही समझती हैं। सलमान रावी, BBC, अमृतसर।
तो विधानसभा चुनाव के गहमा गहमी को फिलहाल यहीं विराम देते हैं और चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने यानी अमेरिका।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मेक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश है और वहां से बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में कई लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हैं, पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशों से अमेरिका आने वाले लोगों की संख्या को कड़ाई से कम करना चाहते हैं, ये उनका चुनावी वादा भी था। और अब वो इसी सिलसिले में अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार खिंचवाने का आदेश देने जा रहे हैं। साथ ही सीरिया, ईरान और इराक जैसे मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के लिए वीजा शर्तों को सख्त करने का ऐलान भी किया जा सकता है। BBC संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए अपूर्व कृष्ण से।
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, कल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा दिन है, बाकी बातों के अलावा हम दीवार भी बनाएंगे। ट्रंप उस दीवार की बात कर रहे हैं जिसका उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था और जिसे लेकर उनकी पड़ोसी देश मेक्सिको से ठन गई थी। ट्रंप ने कहा था कि आप्रवासियों को रोकने के लिए मेक्सिको से लगी अमरीकी सीमा पर 2,000 मील लंबी दीवार बनाई जाएगी और इस पर जो $8 अरब का खर्च आएगा वो मेक्सिको से लिया जाएगा, और मेक्सिको ने कहा था कि वे इस दीवार के लिए एक पाई नहीं देंगे। बहरहाल ट्रंप ने अब व्हाइट हाउस में आते ही दीवार बनाने की बात कर दी है, और यही नहीं समझा जाता है कि वे आप्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए और भी कई बड़े फैसले कर सकते हैं, जिनमें मध्य पूर्व और अफ्रीका के 7 मुस्लिम देशों के लोगों के लिए वीजा नियमों को और कड़े करने का फैसला भी हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ट्रंप के एक सलाहकार रहे कंजर्वेटिव थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के जेम्स काराफोनो का कहना है कि इन कदमों को मुस्लिम विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए।
The Constitution and the law gives the executive lots of authority in terms of issuing...
संविधान और कानून सरकार को वीजा जारी करने के लिए काफी अधिकार देता है। अगर बात सुरक्षा की हो तो इसका आधार किसी व्यक्ति का धर्म नहीं होता, इसका आधार ये होता है कि वो लड़ाई वाले इलाके हैं और वहाँ से सुरक्षा को लेकर चिंताएं हो सकती हैं।
ट्रंप के एक सलाहकार जेम्स काराफोनो के शब्द। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक और बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में हुई धांधली की एक बड़ी जांच करवाएंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि हिलेरी क्लिंटन को मिले कम से कम 50 लाख मत जाली थे, जिनकी जांच करवाई जाएगी। उनके इस बयान की खुद उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने कहा है कि एक राष्ट्रपति को बगैर सबूत के ऐसा कहना शोभा नहीं देता। डेमोक्रेट नेताओं ने भी इसकी आलोचना की है। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि ट्रंप के इस रवैये से लोकतंत्र का महत्व घटेगा।
ये बिल्कुल ही बकवास बयान है, मगर मुझे डर इस बात का है और चिंता इस बात की है कि वे जब 30 से 50 लाख लोगों के फर्जी मत डालने की बात करते हैं तो वो इस देश में सारे रिपब्लिकन गवर्नरों को ये संदेश दे रहे हैं कि वे मतदाताओं के पीछे पड़ें और उनका दमन करें।
डेमोक्रेट नेता बर्नी सैंडर्स के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चुनाव में धांधली का दावा नतीजे आने के बाद नवंबर में ही किया था। दरअसल चुनाव में ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन से लगभग 30 लाख वोट कम मिले थे, मगर स्विंग स्टेट्स कहे जाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में आगे रहने के कारण ट्रंप विजयी रहे। कल रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी और ट्रंप से आग्रह किया था कि वे इस विषय को आगे न ले जाएं, मगर ट्रंप का इरादा शायद कुछ और है।
बीबीसी संवाददाताओं की ये रिपोर्ट सुना रहे थे अपूर्व कृष्ण। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
तो दोस्तों, आज बुधवार है और आज हम पेश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान। इस बार दुनिया जहान में एक ऐसा विषय जिसके बारे में आप सोचते तो जरूर हैं, पर यह नहीं जानते कि इस पर जानकारी कहां से जुटाएं। कभी सोचा है आपने कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों की परमाणु मिसाइलों को कैसे दागा जाता है? इन देशों के पास इतने परमाणु बम हैं कि इस दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। पर क्या है वो प्रक्रिया जिससे परमाणु हथियारों को दागा जाता है? इस बार विशेष प्रस्तुति निखिल रंजन की।
दुनिया जहान।
बीते हफ्ते वॉशिंगटन में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से कुछ ही घड़ी पहले कैमरे की नजर से कहीं दूर डोनाल्ड ट्रंप को एक प्लास्टिक कार्ड सौंपी गई। ये कार्ड हजारों परमाणु बमों को इस्तेमाल करने की वो चाबी है जो लाखों लोगों की जान ले सकती है। पूर्व राष्ट्रपतियों ने बहुत समय देकर इस भयानक ताकत को संभालने के लिए खुद को तैयार किया है। ये वो लम्हा होता है जब अमरीकी सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। लेकिन अमरीका अकेला नहीं है जिसके पास परमाणु हथियार है। मौजूदा वक्त में कम से कम 8 और देश हैं जो परमाणु हमला कर सकते हैं। दुनिया जहान में आज हम यही जानने की कोशिश में हैं कि दुनिया के बड़े देशों के प्रमुख अगर परमाणु बम इस्तेमाल करना चाहें तो उनके और परमाणु बम के बटन के बीच कितनी दूरी रहती है। शुरुआत करते हैं अमरीका से। ब्रूस ब्ला अमरीका के भूतपूर्व परमाणु मिसाइल लॉन्च अधिकारी हैं। 1970 के दशक में वो मोंटाना की पहाड़ों की तलहटी में बने परमाणु नियंत्रण केंद्र में काम करते थे।
It would take us no more than about 1 minute to carry out a launch upon receipt.
परमाणु हथियार दागने के लिए आदेश मिलने के बाद हमें सिर्फ 1 मिनट लगते हैं लॉन्च करने में। अमरीकी सुरक्षा तंत्र में सिर्फ एक शख्स परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए आदेश दे सकता है और वो है राष्ट्रपति।
So the president is always accompanied around the clock.
इसी वजह से राष्ट्रपति 24 घंटे अपने साथ एक सैन्य सहायक रखते हैं। उसके पास एक ब्रीफकेस होती है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं।
काले रंग वाला चमड़े का ब्रीफकेस दिखने में आम जैसा ही है और इसमें संचार के उपकरण होते हैं जिनके जरिए राष्ट्रपति अपने वरिष्ठ सलाहकारों, सेना प्रमुखों और रणनीतिक कमान के प्रमुखों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ब्रीफकेस में कुछ और भी होता है।
a sort of cartoon version of the war plan manual.
जंग की योजना के नियमों का एक कार्टून प्रारूप होता है। एक पन्ने में ग्राफिक्स के जरिए इसका ब्यौरा होता है कि क्या योजना है, कितने हथियार इस्तेमाल होंगे, क्या निशाना होगा, कितने लोगों की जान जा सकती है। ये सब देखकर आसानी से कुछ ही सेकंड में कोई भी समझ सकता है कि क्या होगा।
अमरीका के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, जिनका नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में है। इन्हें समुद्र तल में पनडुब्बियों पर रखा गया है। राष्ट्रपति हथियार दागने का आदेश पेंटागन के वॉर रूम को देते हैं। पहले उन्हें अपने पहचान की पुष्टि करानी होती है और यही काम आता है प्लास्टिक कार्ड। राष्ट्रपति अपना कोड बताते हैं। ये वो चाबी है जो अकल्पनीय बर्बादी का सामान एक पल में जुटा सकती है। ১৯৭৩ में ब्रूस ब्ला और उनके साथी मैक टिमोथी ड्यूटी पर थे। सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 मिसाइलों की स्थिति नजर आ रही थी जो उनके नियंत्रण में थे।
So I retrieved the launch keys and launch codes from the safe.
संदेश मिला, फिर हमने परमाणु युद्ध के लिए अपनी तैयारियों की जांच की, लॉन्च की और पासवर्ड निकाला और कुर्सी पर बैठकर पेटी बांध ली। हमसे कहा गया था कि मिनट भर में सोवियत इलाके से आ रहे परमाणु मिसाइल से धमाका होगा, जिसके तुरंत बाद हमें परमाणु मिसाइल दागना था। हम इंतजार करते रहे,
लेकिन परमाणु मिसाइल नहीं आए और युद्ध टल गया। इस तरह के कई मौके आए, लेकिन क्या होगा अगर राष्ट्रपति बिना किसी उकसावे के खुद ही परमाणु युद्ध करने का फैसला कर लें? क्या ये मुमकिन है कि अधिकारी उनका आदेश मानने से मना कर दे?
The battle staff is trained to carry out the orders of the president, period.
अधिकारियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वो राष्ट्रपति का हुक्म माने।
नियंत्रण से बाहर जा रहे किसी राष्ट्रपति को रोकना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति को परमाणु हमले का आदेश देने के लिए किसी और की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ये तो हुई अमरीका की बात, लेकिन रूस का परमाणु तंत्र कैसे काम करता है? रूस में भी अमरीका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह ही एक ब्रीफकेस है जो राष्ट्रपति से कभी भी दूर नहीं रहता। ईगर सचगेन हथियार विशेषज्ञ हैं और अब वो एक ब्रिटिश थिंक टैंक से जुड़े हैं और दुनिया भर के हथियारों पर रिसर्च करते हैं।
Usually it's 10-20 meters when president is sleeping, for instance. These
जब राष्ट्रपति सो रहे होते हैं तब भी ये उनसे महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर होता है। उनका एक सहायक दूसरे कमरे में ब्रीफकेस के साथ रहता है जो उन्हें जगा सकता है।
अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो ब्रीफकेस में अलार्म बजने के साथ ही रोशनी भी जलेगी और राष्ट्रपति को तुरंत बताया जाएगा।
He is the supreme commander. It's his responsibility and his right to decide.
राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसलिए फैसला करना उनकी जिम्मेदारी और अधिकार है। वो आकर ब्रीफकेस खोलते हैं और अपने सहयोगियों से बात करते हैं।
Everybody in the, you know, chain of command will see just blinking.
चेन ऑफ कमांड में बहुत से लोग होते हैं और हर किसी के सामने एक बत्ती जलती है जिससे उन तक आदेश पहुंचता है। उन्हें वास्तव में इसका अंदाजा नहीं होता कि हो क्या रहा है।
इसका मतलब है कि बहुत कम आसार है कि हमले का बटन आदेश मिलने के बाद भी नहीं दबाया जाए। हमले में शामिल बहुत से सैन्य अधिकारी अपने इस तंत्र का अक्सर परीक्षण करते रहते हैं और दूसरे अधिकारियों को पता नहीं होता कि वो सचमुच हमला कर रहे हैं या फिर अभ्यास।
They will just receive the order, load flight plan number 2.
उन्हें सिर्फ आदेश मिलता है कि load the flight plan number 2, और इसके बाद बस वो इतना ही जान पाते हैं कि शायद ये flight plan training के लिए था। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मिसाइल दागने में क्रू की तरफ से कोई मनोवैज्ञानिक समस्या ना हो। वो ये कभी नहीं जान सकते कि मिसाइल सचमुच दागा जाएगा या नहीं।
ये सिर्फ इसलिए ताकि पता चल सके कि तंत्र पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अटलांटिक सागर में हर वक्त कोई ना कोई पनडुब्बी रहती है जिसके बारे में ना तो जानकारी होती है और ना ही उसे जाना जा सकता है। वो सागर की परतों में चुपके चुपके कदम बढ़ाती है। प्रोफेसर पीटर हेनेसी द साइलेंट डीप के सहलेखक हैं, जो रॉयल नेवी सबमरीन सर्विस का इतिहास है। ब्रिटेन के पास 4 वन गॉड क्लास परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक हमेशा गश्त पर और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। ब्रिटेन पर परमाणु हमला होने की सूरत में
Only the Prime Minister can authorize nuclear retaliation.
केवल प्रधानमंत्री हैं जो जवाबी परमाणु हमले के लिए हुक्म दे सकते हैं।
संदेश को लंदन के बाहर एक और बंकर में भेजा जाता है और फिर वहाँ से गश्त लगाती पनडुब्बियों तक। 2009 में BBC ने पनडुब्बियों को भेजे गए सिम्युलेटर संदेश को रिकॉर्ड किया था।
13, 20, 34. Okay, good copy received. Axel, my half authenticate, sir.
Will my half authenticate, sir?
Ship control, pipe the submarine to action station's missile for strategic launch.
कल्पना कीजिए, चीन की तरफ दुश्मन का कोई परमाणु मिसाइल बढ़े तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? तोंग झाओ कहते हैं कि जब तक मिसाइल गिर नहीं जाएगा कोई नहीं जान सकेगा। उनका कहना है कि चीन में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। तोंग झाओ बीजिंग के कार्नेगी शिंगुआ सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में रिसर्च फेलो हैं।
China will wait and will ride out the first nuclear strike.
चीन हमला करने से बचेगा क्योंकि चीन की नीति है कि हमला होने के बाद पहले इसकी पुष्टि की जाएगी कि परमाणु हमला हुआ है, फिर इसके बारे में समय लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। ये देखा जाएगा कि हमले की प्रकृति कैसी है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, और फिर इसके बाद जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार होगा और तब उसमें सबसे बेहतर चुना जाएगा।
नीतिगत मामलों से जुड़े कई अधिकारी मानते हैं कि हमले के बारे में पहले से पता न होने की सूरत में मुमकिन है कि अगर आप हमला होने का इंतजार करते हैं तो जिन नेताओं को जवाबी कार्रवाई का फैसला करना है वो खुद ही उस हमले का शिकार बन जाएं, या फिर वो हथियार जिन्हें सुरक्षा के लिए बाहर निकाला जाना है।
That's exactly right, but China has made great efforts to protect their leadership and their nuclear forces.
आपका कहना सही है, लेकिन चीन ने अपने नेताओं और परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पहले हमला करने से बचने के लिए चीन ने जमीन के भीतर काफी गहराई में बहुत लंबी सुरंगें बनाई हैं। कई सुरंग तो हजारों मीटर की गहराई पर हैं और उनके ऊपर जमीन पर पहाड़ी इलाका है।
तो जब पहाड़ों से धुआं उठ रहा होगा, नीचे सुरंग में कौन होगा जो हमले के बारे में फैसला करेगा?
It's all classified, but based on open source research, people in general believe that
ये गोपनीय है, लेकिन रिसर्च करने वाले लोगों का अंदाजा है कि इसके बारे में सेना का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की सबसे उच्च स्थायी कमेटी के पास जाता है।
हमले का अंतिम फैसला राष्ट्रपति लेते हैं या फिर खुद कमेटी?
We don't know.
हमें पता नहीं है।
मौजूदा वक्त में चीन बदल रहा है, मतलब एक और देश अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपने यहाँ लगाने की तैयारी में है।
परमाणु हथियारों को बनाने वाले हाथों में ही दुनिया को उससे बचाने की भी चाबी है। चेन ऑफ कमांड में आखिरी सीढ़ी पर मौजूद अधिकारी विशाल खतरे का अनुमान कर अंतर्मन की आवाज पर अपने हाथ रोक सकते हैं, और यही आवाज शायद परमाणु हथियारों के कहर के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, वो आवाज जो हमें इंसान बनाती है।
दुनिया जहान के संक पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले खेल समाचार, जिसके लिए समय बहुत कम है, लेकिन खेल समाचारों में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को टेस्ट और वनडे में कामयाबी दिलाने के बाद कप्तान विराट कोहली अब T20 में सीरीज जीतने की कोशिश करते दिखाई देंगे। दोनों टीमों के बीच कल से 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है, जिसका पहला मुकाबला कानपुर में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिंग ने रोहन बोपन्ना और ग्रेबिला डबरोस्की की जोड़ी को 6-4, 3-6, 12-10 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस हार के साथ ही रोहन बोपन्ना का ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभियान खत्म हो गया है। तो ये थे खेल समाचार, निखिल रंजन तैयार हैं मुख्य समाचारों के साथ।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हाल के हुए चुनाव में गड़बड़ियों की जांच कराएंगे। राष्ट्रपति की ये कोशिश अमरीका में एक और सख्त मतदान प्रक्रिया की जमीन तैयार कर सकती है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एक होटल पर चरमपंथियों के हमले के बाद कम से कम 28 शवों को देखा है। भारत प्रशासित कश्मीर में अधिकारियों का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास हिमस्खलन की दो अलग अलग घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता विनय कटियार ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पर दिए अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। चीन ने उत्तर कोरिया को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर प्रतिबंध का दायरा और बढ़ा दिया है। और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि इनकी सरकार यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर करने की योजना पर दस्तावेज पेश करेगी। बीबीसी समाचार।
बहुत बहुत शुक्रिया निखिल रंजन। और अब दिन भर कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की राजेश जोशी को अनुमति दीजिए। इसका तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। नमस्कार।